नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। टॉम टॉली की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स, अ नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्शन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आरंभिक व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी परिचय है। यह 2019 में प्रकाशित पुस्तक उन पाठकों के लिए लिखी गई है जो एआई को प्रोग्रामिंग या गणित की गहराई में गए बिना समझना चाहते हैं। पुस्तक एआई को किसी एक उत्पाद या क्षमता के बजाय तकनीकों के व्यापक समूह के रूप में प्रस्तुत करती है। इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, चैटबॉट और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जैसे विषय शामिल है। टॉली का उद्देश्य केवल शब्दावली समझाना नहीं, बल्कि यह दिखाना भी है कि डेटा, एल्गोरिदम और व्यावसायिक प्रक्रियाएं मिलकर वास्तविक अनुप्रयोग कैसे बनाती है। उबर, फेसबुक, वेमो, यूआईबात और स्टिच फिक्स जैसे उदाहरणों के माध्यम से पुस्तक कार्यान्वयन की व्यावहारिक चुनौतियों पर ध्यान देती है। साथ ही यह नैतिक जोखिमों, संगठनात्मक बदलाव और समाज पर एआई के संभावित प्रभाव को चर्चा में रखती है। इसलिए यह तकनीकी पाठ्यपुस्तक से अधिक एआई साक्षरता और निर्णय क्षमता विकसित करने वाली परिचयात्मक पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एआई को एक तकनीक नहीं, परस्पर जुड़ी क्षमताओं की श्रेणी के रूप में समझना। पुस्तक का केंद्रीय योगदान यह स्पष्ट करना है कि एआई कोई एकल जादुई प्रणाली नहीं है। इसके अंतर्गत अलग अलग तकनीकी तरीके और उपयोग आते हैं जिनकी क्षमताएं, सीमाएं और डेटा की जरूरतें अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, किसी ग्राहक सहायता चैटबॉट को भाषा समझने और प्रश्नों का वर्गीकरण करने की जरूरत हो सकती है, जबकि स्वायत्त वाहन को दृश्य पहचान, सेंसर डेटा, पूर्वानुमान और त्वरित निर्णय की जरूरत होती है। दोनों को एआई कहना सही है, पर दोनों के निर्माण और जोखिम समान नहीं है। यह भेद गैर तकनीकी प्रबंधकों के लिए विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि वे अक्सर एआई को एक व्यापक समाधान के रूप में खरीदने या लागू करने की सोचते हैं। टॉली की परिचयात्मक पद्धति पाठक को पहले समस्या पहचानने, फिर उपयुक्त एआई क्षमता चुनने की दिशा देती है। इससे यह प्रश्न अधिक उपयोगी बनता है कि किसी संगठन को एआई चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि किस कार्य में किस प्रकार की बुद्धिमान स्वचालन क्षमता वास्तविक मूल्य दे सकती है। पुस्तक इस तरह प्रचार और व्यावहारिक संभावना के बीच अंतर करने का आधार बनाती है। दूसरा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डेटा आधारित सीखने का अंतर। टॉली मशीन लर्निंग को ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझाते हैं जिसमें प्रणाली उदाहरणों और डेटा से पैटर्न सीखती है तथा नए मामलों पर अनुमान या वर्गीकरण करती है। पारंपरिक नियम आधारित सॉफ्टवेयर में मनुष्य स्पष्ट निर्देश लिखता है। मशीन लर्निंग में अपेक्षित परिणामों वाले पर्याप्त और उपयुक्त डेटा के आधार पर मॉडल संबंधों का अनुमान लगाता है। इसलिए मॉडल की गुणवत्ता केवल एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि डेटा की प्रासंगिकता, सफाई, प्रतिनिधित्व और निरंतर मूल्यांकन पर भी निर्भर होती है। डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग के एक विशेष रूप के रूप में रखा गया है जो बहुस्तरीय न्यूरल नेटवर्कों का उपयोग करता है। यह छवियों, आवाज और जटिल पैटर्नों जैसे क्षेत्रों में प्रभावी हो सकता है जहां उपयोगी विशेषताओं को पहले से हाथ से तय करना कठिन होता है। फिर भी पुस्तक के गैर तकनीकी उद्देश्य के अनुरूप मुख्य बात यह है कि डीप लर्निंग हर समस्या का स्वचालित उत्तर नहीं है। इसे अक्सर अधिक डेटा, कंप्यूटिंग संसाधन और सावधानीपूर्ण परीक्षण चाहिए। पाठक के लिए उपयोगी निष्कर्ष यह है कि किसी एआई पहल का मूल्यांकन मॉडल के नाम से नहीं, समस्या, उपलब्ध डेटा और मापे जा सकने वाले परिणामों से करना चाहिए। तीसरा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से चैटबॉट और डिजिटल संवाद की सीमाएं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP। पुस्तक में मनुष्य और कंप्यूटर के बीच भाषा आधारित संवाद की प्रमुख तकनीक के रूप में आता है। इसका लक्ष्य केवल शब्द पहचानना नहीं, बल्कि उपयोगकर्ता के आशय, संदर्भ और कभी कभी भाव को पर्याप्त रूप से समझना है ताकि प्रणाली उपयोगी उत्तर या अगला कदम दे सके। चैटबॉट और डिजिटल सहायक इसके स्पष्ट अनुप्रयोग है। वे सामान्य प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जानकारी खोज सकते हैं, अनुरोध को सही विभाग तक भेज सकते हैं और 2400 घंटे प्रारंभिक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। पर पुस्तक का व्यावहारिक रुख यह संकेत देता है कि सफल चैटबॉट बनाने के लिए सीमित और स्पष्ट उपयोग क्षेत्र जरूरी है। यदि प्रणाली को हर तरह की जटिल बातचीत संभालने का वादा किया जाए तो भाषा की अस्पष्टता, अधूरा संदर्भ और असामान्य प्रश्न उसकी कमजोरियां उजागर कर सकते हैं। इसलिए बेहतर कार्यान्वयन में स्पष्ट एस्केलेशन मार्ग होना चाहिए ताकि कठिन या संवेदनशील मामलों में मनुष्य सहायता संभाल सके। NLP का मूल्य मानवीय सेवा को बिना सोचे बदलने में नहीं, बल्कि दोहराए जाने वाले संवादों को व्यवस्थित कर सेवा की गति और उपलब्धता सुधारने में है। चौथा, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन और रोबोटिक्स में व्यावसायिक उपयोग का व्यावहारिक आधार। पुस्तक रोबोटिक्स और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन या RPA को एआई के व्यावसायिक प्रभाव के अलग लेकिन जुड़े हुए आयामों के रूप में रखती है। भौतिक रोबोट वातावरण में चलने, देखने, वस्तुएं संभालने या अन्य कार्य करने वाली मशीनें हो सकते हैं। इसके विपरीत आरपीए आमतौर पर डिजिटल प्रणालियों के भीतर दोहराए जाने वाले नियम आधारित कार्यों को स्वचालित करता है, जैसे डेटा को एक प्रणाली से दूसरी में ले जाना या मानकीकृत प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि हर स्वचालन परियोजना को उन्नत मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं होती। कई संगठनों को पहले ऐसी स्थिर प्रक्रियाओं से लाभ मिल सकता है जिनमें नियम स्पष्ट हों, अपवाद सीमित हों और काम का आयतन अधिक हो। टॉली के केस स्टडी केंद्रित दृष्टिकोण का सार यह है कि तकनीक को प्रक्रिया की वास्तविकता से जोड़कर देखना चाहिए। खराब, अनिश्चित या लगातार बदलती प्रक्रिया को केवल स्वचालित कर देने से समस्या दूर नहीं होती। सफल पहल के लिए प्रक्रिया मानचित्रण, अपवादों की पहचान, जिम्मेदार स्वामित्व और परिणामों का मापन जरूरी है। लागत बचत उपयोगी लक्ष्य है, लेकिन बेहतर ग्राहक सेवा, कम त्रुटियां और कर्मचारियों को अधिक जटिल कार्यों के लिए समय मिलना भी समान रूप से महत्वपूर्ण लाभ है। अंत में कार्यान्वयन जोखिम, नैतिक प्रश्न और एआई शासन की आवश्यकता। पुस्तक एआई को केवल दक्षता बढ़ाने वाले उपकरण की तरह नहीं दिखती, बल्कि इसके साथ आने वाले जोखिमों और व्यापक सामाजिक प्रभावों को भी शामिल करती है। एआई प्रणाली डेटा से सीखती है, इसलिए पक्षपाती, अधूरा या असंतुलित डेटा उसके परिणामों को प्रभावित कर सकता है। निर्णय का उपयोग भर्ती, ऋण, ग्राहक सेवा या अन्य संवेदनशील संदर्भों में हो तो निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रश्न और महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और स्वचालित निर्णय की व्याख्याता ऐसे विषय हैं जिन्हें परियोजना के अंत में नहीं, आरंभ से विचार में लेना चाहिए। टॉली संगठनों को लागत बचत या तकनीकी आकर्षण से आगे देखने के लिए प्रेरित करते हैं। किसी उपयोग मामले में यह स्पष्ट होना चाहिए कि निर्णय के लिए कौन जिम्मेदार है, गलत परिणाम मिलने पर सुधार कैसे होगा और मनुष्य की समीक्षा कब आवश्यक होगी। पुस्तक एआई से प्रभावित कंपनी संरचनाओं, काम के स्वरूप और शासन संबंधी बदलावों की ओर भी संकेत करती है। 2019 की पृष्ठभूमि में लिखी होने के कारण यह आज के जनरेटिव एआई उपकरणों का विस्तृत मार्गदर्शन नहीं देती, फिर भी इसका मुख्य सिद्धांत प्रासंगिक है। एआई अपनाने के लिए तकनीकी क्षमता के साथ जोखिम प्रबंधन, नैतिक विवेक और स्पष्ट संगठनात्मक उत्तरदायित्व आवश्यक है। निष्कर्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिक्स उन प्रबंधकों, उद्यमियों, नीति और संचालन से जुड़े पेशेवरों तथा सामान्य पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें एआई की कार्यकारी समझ चाहिए, पर जो तकनीकी मॉडल बनाना नहीं सीख रहे हैं। यह पुस्तक विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें चैटबॉट, ग्राहक सेवा स्वचालन, डेटा आधारित निर्णय, आरपीए या रोबोटिक्स संबंधी प्रस्तावों का आकलन करना पड़ता है। पाठक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एनएलपी के बीच बुनियादी अंतर समझ सकता है, साथ ही यह भी देख सकता है कि एआई परियोजनाओं में डेटा, प्रक्रिया, मापन और जवाबदेही क्यों आवश्यक है। इसी कारण इसका लाभ केवल अवधारणाओं की शब्दावली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बेहतर प्रश्न पूछने की क्षमता में बदलता है। समान परिचयात्मक पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर व्यावसायिक केस स्टडी, कार्यान्वयन संबंधी सावधानियों और नैतिक प्रभावों को एक ही ढांचे में रखना है। यह एआई की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने के बजाय उसे अनेक तकनीकों और संगठनात्मक निर्णयों के संयोजन के रूप में देखने में मदद करती है। इसकी सीमा भी स्पष्ट है। यह 2019 की पुस्तक है, इसलिए बाद के जनरेटिव एआई, बड़े भाषा मॉडल और समकालीन नियामक बहसों के लिए इसे नवीन स्रोतों के साथ पढ़ना चाहिए। फिर भी एआई के मूल विचारों, उपयोग मामलों और जिम्मेदार अपनाने की नींव के लिए यह एक सुगम, संतुलित प्रारंभिक पाठ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं तोंतावली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।